ओम शांति। हम सभी मिलकर एक बार हमारी सह मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुदेश दीदी का एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। आप वो पारस है जो सोना पल में करते हैं, आप वो पारस है जो सोना पल में करते हैं, आप वो कुशल शिल्पी है जो कड़े पत्थर को सुखड़ मूर्ति में ढलते हैं। मिली आज आपकी सोबत हमारे भाग्य है, मिली आपकी सोबत हमारा भाग्य है। आपकी शाम, आज की शाम आपके नाम से रोशन है। हमारी आदरणीय सुदेश दीदी जी 1957 आज से 7 साल पहले इस संस्था से जुड़ी और तुरंत ही समय वेस्ट न करते हुए, जबकि वह कॉलेज में थी, आपने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन आर्ट्स में किया दिल्ली से, और वहीं पर आप अपनी सेवाएं देने के लिए आजीवन अपने को समर्पित किया। दिल्ली के और दिल्ली के आजू बाजू के जगह पर आपने बहुत बहुत मेहनत करके कई हमारे सेवा केंद्र खोले। अब मैं सुदेश दीदी जी को नम्र निवेदन करती हूँ कि आप आज के अपने आशीर्वचन हमें सुनाएं, क्योंकि 3 दिनों से आपको अनेक विषयों पर बहुत सारी जानकारी मिली है, लेकिन जब तक एक बड़े का आशीर्वाद न मिल जाए तब तक कोई भी व्यक्ति यहाँ से भरपूर होकर कैसे जाएगा। इसीलिए हमारी आदरणीय सुदेश दीदी जी आज अपने आशीर्वचन जरूर हम सबको देंगी, और मैं बहनों से नम्र निवेदन करती हूँ कि उन्हें स्वागत करें और तुलसी के पौधे द्वारा, वह भी जिस रीति से हरेक कर्म से उपयोगी है, ऐसे उन्हें तुलसी की भेंट की जाए। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम प्रेम। आप सभी संसार में रहते, व्यवहार करते, व्यापार करते बहुत अनुभवी हो चुके हैं। कितनी भी समस्याएं आए, अनुभव से सीखा होगा, और अनुभव बढ़ाने के लिए ही वास्तव में हर एक इंसान अपने जीवन को किसी न किसी क्षेत्र में बिजी करता है। बिजनेस खाली बिजनेस नहीं है, पर चाहे परिवार में रहते परिवार की परिस्थितियों को हैंडल करे, चाहे व्यापार करते जिनके साथ व्यापार करते हैं उनको हैंडल करे, चाहे उद्योग करते इस प्रकार से उनको अपनी उस स्थिति को और आगे बढ़ाना है, उद्योग को आगे बढ़ाना है, हमेशा बुद्धि कुछ न कुछ कार्य करती रहेगी। आपने अभी साइलेंस में एक संगीत के कुछ शब्द सुने, क्या थे वो? हमेशा कुछ बात होती है तो बहुत करके ये निकलता है, भाई आज के संसार में रहते आज की परिस्थिति को देखते बड़ा मुश्किल है जीवन जीना। और वो गीत के लेखक ने अनुभव के आधार पर जिस बहन ने ये गीत बनाया और गाया, अनुभव के आधार पर बड़े प्रेरणादायक शब्द बोले हैं, गाए हैं। क्या सुना आपने? ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अब खुदा और खुद, खुदा और खुद और खुदाई, ये तीन शब्द का मेल है आध्यात्मिकता। खुदा, खुद, खुदाई खिस्मतगार और कुदरत, खुदरत कुदरत, खुदा यानी खुद आता है, रचता और रचना का राज समझाता है, समझ देता है, क्योंकि ज्ञान का सागर है। अज्ञान अंधकार में भिटकी हुई आत्माओं को ज्ञान का प्रकाश देकर, रोशनी देकर अज्ञान अंधकार को दूर करते हैं। इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो अभी उस गीत में आपको क्या ज्ञान मिला? ज्ञान माना समझ, परिचय, आपको अपना परिचय मिला कि आप कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं हो, आप कोई साधारण आत्मा नहीं हो। खुदा ने आपको किस लिए गढ़ा है? कुदरत से अनेक प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, चाहे परिस्थिति अंदर की स्थिति से आवे, चाहे परिस्थिति प्रकृति के तूफानों से आवे, और चाहे परिस्थिति समाज के व्यवहार और संस्कार से, इंडिविजुअल स्थिति के आधार से टेस्ट आता है, पर उसको बेस्ट में चेंज करें, उसको सफलता के रूप में लेवें, उसके लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है। विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है प्रकृति को भी अपने वश करने के लिए। कहा जाता है रावण के राज्य में रावण ने पांचों तत्वों को अपने बेड के चार पहियों से बांधा हुआ था। धरती पर तो पलंग था, परंतु चार पांवों से चार तत्व बंधे हुए थे। अभी क्या मतलब है? यानी आकाश को कैसे बांधा, समुद्र को कैसे बांधा होगा, तूफान हवा को कैसे बांधा होगा, अग्नि को कैसे बांधा होगा? पर भाव ये है कि आज के समाज में जहां अनेक प्रकार की मत है, साइंस का भी जोर है, वहां पर आपके घर में ही, आपके कमरे में ही आपने स्विच ऑन किया, लाइट आ गई, आपने नलका खोला, पानी आ गया, आपने गीजर खोला, गर्म हवा से, पानी से, ठंडे पानी से स्नान किया, एसी ऑन किया, ठंडक आ गई, सेंट्रल हीटिंग ऑन की, गर्मी आ गई। यानी पांच, यानी धरती पर रहते हुए भी आकाश में उड़ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि बेशक प्रकृति ने अपनी सभी शक्तियां साइंस वालों ने प्रकृति को जीतने की कोशिश की है, परंतु साइंस के साथ जब तक साइलेंस की शक्ति नहीं है, तो जो भी साइंस के साधन हैं, गारंटी नहीं है कि सुख मिलेगा। साइंस के साधन हैं, हमारा उद्योग बढ़ सकता है बहुत फास्ट, हमारा व्यापार बहुत अच्छी तरह से इंटरेक्शन हो सकता है, हर चीज की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, घर बैठे चीजें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, घर बैठे व्यापार कर सकते हैं। परंतु क्वेश्चन है कि क्या मैं अपने अंदर अपना सुधार कर सकता हूं? जो मुझे आत्मा को चाहिए, किस लिए व्यापार करते हैं, किस लिए उद्योग करते हैं, कि हमेशा हमारी सुख सुविधाएं बढ़े, हमारा परिवार सुखी रहे, समृद्धिशाली बने, हर प्रकार की सुविधाएं हों। ये सब होते हुए भी नींद नहीं आती है, सो नहीं सकते, संपत्ति तो बढ़ा सकते हैं पर शांति कहां बढ़ाएं? साधन तो सुख के बढ़ा सकते हैं, परंतु साधना कैसे बढ़े? संबंध तो स्वाभाविक रीति से संसार में रहते बढ़ेंगे। परिवार है, किसी घर में दो भाई हैं, किसी घर में चार बच्चे हैं, किसी घर में छह बच्चे हैं, संबंध तो बढ़ेगा, संबंध तो बढ़ता ही जाएगा। संबंध बढ़ते हुए भी संबंध में सुख कहाँ है? संबंध में हार्मनी नहीं है, संबंध में विश्वास नहीं है, संबंध में स्नेह नहीं है, संबंध में रिस्पेक्ट नहीं है। तो वो जो टेंशन बढ़ती है, सिचुएशन सामने आती है, उस सिचुएशन को सामने करने के लिए, जिसको दूसरे शब्दों में परिस्थितियां बहुत हैं, प्रॉब्लम्स बहुत है। अब प्रॉब्लम्स का हल क्या है, परिस्थिति का अर्थ क्या है? पराई स्थिति, परिस्थिति आई है, कहते ये मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, इस व्यक्ति का जो बिहेवियर है ना, ये प्रॉब्लम है मेरे लिए। घर में मैं तो ठीक हूं, पर परिवार में फलाना मेंबर बहुत डिफिकल्ट है हैंडल करना। ये जो मैं कह रही हूं, आप सबके अनुभव की बात कह रही हूं, क्योंकि हर एक के मुख से अपनी परिस्थिति, स्वस्थिति बदल गई जाती है परिस्थिति के कारण। पराई किसी और की अवस्था का असर हमारे पर इतना ज्यादा पड़ता है कि हमारी शांति भंग हो जाती है, हमारी खुशी भंग खत्म हो जाती है, हमारा अपने से विश्वास कम हो जाता है, उत्साह उमंग के पंख कट जाते हैं, हिम्मत को हार देते हैं। ऐसे ही सब आत्मा में शक्तियां भरी हुई हैं, ज्ञान होते हुए भी वो काम नहीं कर रहे, समझ होते हुए भी कंफ्यूजन हो रहा है। कारण क्या है? बाहर की शक्तियां तो हैं हमारे पास, पर अपने आप से संबंध और दूसरों से संबंध और परमात्मा से संबंध, वो संबंध एकदम स्विच ऑफ हो गया। याद करते हैं परमात्मा को, आप कहेंगे बहन जी परमात्मा को ही तो याद करते हैं, भला दुख के समय और कौन मदद करेगा? परिस्थिति के समय आखिर तो हमारा ध्यान परमात्मा में ही जाता है। किसका ध्यान जाता है? आपका जाता है, पर आपका अपने में ध्यान गया। मैं थोड़ा समझने की एक बात है बता रही हूं कि आपका ध्यान परमात्मा में जब गया तो आपका ध्यान गया, या पहले आपकी परिस्थिति आपके सामने जो आपको चाहिए उसका हल चाहिए, उस मुसीबत को दूर करना चाहिए, उस संस्कार को मिटाना चाहिए, तो आपने परिस्थिति को सामने रखा, परिस्थिति स्वरूप होकर के परमात्मा को याद किया। अगर मैं समझती हूं यहां पर आपको एक सेशन आप कौन हैं, आध्यात्मिकता का आधार क्या है, आध्यात्मिकता है क्या, आध्यात्मा को ये कह, मैं तो बहुत धर्म को बहुत मानता हूं, धर्म कर्म इस पर मेरा बड़ा विश्वास है, परंतु वास्तव में आपको स्वधर्म क्या है? धर्म में शक्ति है तो स्वधर्म क्या है, और आप कौन हो? आप कहेंगे कोई नई बात है क्या, मैं तो जानता हूं ना, अपना नाम भी जानता हूं, अपने पिता का नाम भी जानता हूं, अपना सरनेम भी जानता हूं, अपना बिजनेस भी जानता हूं, संबंध भी हूं, कौन हूं, बाप हूं के दादा हूं, अंकल हूं के आंटी हूं, सास हूं के बहू हूं, मैं तो जानती हूं। पर वो तो आप संबंध को जानते हैं, पोजीशन को जानते हैं, पर आप कौन है? कहेंगे मैं मनुष्य हूं ना। आप मनुष्य हैं, ये तो ठीक बात है, मनुष्य हैं, परंतु मनुष्य किसको कहा जाता है? आपने अपने आप को जो आपके शरीर पर नाम मिला और जो मां बाप ने पक्का कराया, चाहे आप बचपन से मानो हमको परिचय मिला अपना, तू लड़की है, मीठी बच्ची है मेरी, तो मेरा प्यारा बच्चा है, लड़की है लड़का है, तो जो भी परिचय मिला वो हमने पक्का कर लिया, मैं लड़की हूं मैं लड़का हूं, तो मुझे अपने शरीर का जो स्वरूप है उसका परिचय मिला, ये तो मेरा एक रूप मुझे मिला, फिर मेरे शरीर पर मेरा नाम पड़ा। आप देखेंगे बच्चे को पता नहीं 10 बारी दिन में तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है रिपीट करवाते हैं। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, कोई भी घर में आता है, तेरा नाम क्या है, बेचारा बच्चा नाम करते नाम रिपीट करते करते थक जाता है, राइट? तो नाम पक्का कराने का मतलब था शरीर का नाम पक्का कराया, मनुष्य के रूप का नाम पक्का कराया, परंतु कभी भी आप कौन हो मां बाप ने ये परिचय नहीं दिया। आप जीव आत्मा हो, मनुष्य आत्मा हो, ह्यूमन बीइंग हो, ह्यूमन और बीइंग, तो हमने अब तक जो अटेंशन अपने पर दिया और जो हमको अटेंशन दिलवाया वो फिजिकल फॉर्म का दिलवाया, परंतु इसमें मैं रहने वाली कौन हूं, मेरा नाम जब कहा, मेरा शरीर जब बोला, तो मैं शरीर तो नहीं हूं ना, मैं फेस तो नहीं हूं ना, मेरा फेस, मेरा हाथ, मेरी टांग, ये तो नहीं कहते मैं टांग टूट गई हूं, मेरी टांग टूट गई है, मेरा कान दर्द है, मैं कान हूं या मैं आंख हूं, ये नहीं है। तो पहली बात यह है कि आध्यात्मिक शक्ति का मतलब है आत्मिक शक्ति को बढ़ाना। आत्मा शरीर में है तो उसके पास सब प्रकार का अनुभव है, सुख और दुख का। आज मैं जिंदा हूं, चाय बनाते मेरा हाथ जल गया, मैं कहती मेरा हाथ जल गया, अरे तो इतनी गरम किटली को हाथ लगाया, हाथ जल गया, या कप गरम था मेरे ऊपर गिर गया, मेरा पैर जल गया, कल मैं शरीर छोड़ देती हूं, सारा शरीर आग में जलाएंगे, क्या मैं उछल करके आऊंगी बाहर? आज इसको मेरी माँ कहती है, मेरा हस्बैंड मेरी वाइफ कहता है, मेरी बहन मेरे को बहन कहती है, मेरा भाई कहता है, कल मेरे को एक रात भी घर में नहीं रखेंगे। किसके साथ रिश्ता था? रिश्ता शरीर के साथ था या रिश्ता आत्मा के साथ था? क्या निकल के चली गई शरीर में से? कौन सी शक्ति निकल गई? मनुष्य का रूप तो सामने पड़ा है, क्या निकल गया? आत्मा निकल गई। तो आध्यात्मिक शक्ति का मतलब है अपने आप को आत्मा समझ करके हर कर्म करना, व्यवहार करना, व्यापार करना, क्रिएशन आत्मा की है ना कि शरीर की, एक्शन शरीर द्वारा होता है। पर अंडरस्टैंडिंग, प्लानिंग, डिसीजन यह आत्मा का है, हाथ डिसाइड नहीं करता। आपने संकल्प किया, आपको इन्फॉर्मेशन मिला, इनविटेशन मिला, बहुत प्यार से सब निमंत्रण मिला, हमको बहुत खुशी है, वेलकम है, आप अपने घर में आए हैं, आप अपने घर में ही आए हैं, क्योंकि आप पिता परमात्मा की संतान हैं, हम एक बाप के बच्चे भाई बहन हैं, तो वेलकम आपका अपने घर में। परंतु आपको ये संकल्प अथवा विचार आया, शरीर अपने आप चल के नहीं आया, आपने परिचय आपको मिला, इनविटेशन मिला अथवा निमंत्रण पर्सनल मिला, तो आपके मन में संकल्प था, हाँ ब्रह्मा कुमारियों के पास मैंने सोचा तो कई बार ही है, कई पहली बार भी आए होंगे, अच्छा चल के देखे तो सही, फिर बिजनेस करता हूं, चलो थोड़ा कुछ न कुछ और भी बिजनेस वाले मिलेंगे, व्यापार वाले मिलेंगे, आपस में मिलना होगा, लेन देन होगा, अनुभव बढ़ता है, चलो कुछ भी सोचा तो निर्णय किया आपने। जिन्होंने निमंत्रण दिया उनको, उनकी रेस्पेक्ट रखने के लिए उनके प्यार में आपने स्वीकार किया और अपने अंदर लक्ष्य रखा कि चलो चार दिन होकर के आते हैं। ना पैर अपने आप चले, ना हाथ अपने आप चला, शरीर अपने आप चल के नहीं आया। तो ये शरीर में से कौन सी शक्ति निकल गई? आत्मा चली गई। और कहा जाता है वो, अब आत्मा है क्या? लाइट है ना, लाइट इज गॉन, लाइफ इज गॉन। तो हम उस आत्मा के जाने के बाद दीवा जगाते हैं, मोमबत्ती जगाते हैं। क्या मतलब है? वो लाइट जो जगाते हैं वो तो कमरे तक भी रोशनी नहीं देती, तो कहते हैं अगर लाइट नहीं जलाएंगे आत्मा की सदगति नहीं होगी। तो वास्तव में लाइट आत्मा की जीते जी जगानी है, शांति और शक्ति भरनी है, तो जीते जी जीते हुए इसी शरीर में रहते अपने में शक्ति भरनी है। तो अब तक हम बेशक भक्ति करते आए हैं, साधना करते आए हैं, बहुत प्रकार के पुरुषार्थ करते आए हैं, परंतु वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति है अपना अनुभव, अपनी आत्मा की शक्तियों को बढ़ाना, आत्मा के अंदर बल भरना। तो आत्मा, परंतु हमने भक्ति की, शास्त्र पढ़े, तीर्थ किए, जप तप किए, जिन्होंने ये सब साधनाएं की उनके पुस्तक पढ़ते आए, उनके द्वारा हम गायन करते हैं जो उन्होंने किया, उनको भगवान से मिला, भगवान आप हमें भी वो दो। तो ये तो ऐसे ही है, भावना से कुछ मिलेगा जरूर, परंतु शक्ति कब बढ़ती है जब आपका अपने से अपना संबंध जुड़ता है। अगर आपको अपना फेस देखना हो, अपना चेहरा देखना हो, तो आपको क्या चाहिए? दर्पण चाहिए ना, मिरर चाहिए। मिरर हमने आपको किसी ने दे दिया, अब अपने चेहरे के दर्पण के सामने जब अपना फेस देखा, आपको तो अपना फेस दिखाई पड़ने लगा, दर्पण जरूरत थी, आपको दर्पण से आपने देख लिया। परंतु दर्पण अगर नेत्रहीन को दिया जाए, इसको दृष्टि नहीं है, तो दर्पण काम करेगा क्या? उसको अपना फेस दिखाई पड़ेगा? मैं क्या कहना चाहती हूं कि मेरी आंख जो मेरे शरीर का ही अंग है, मैं अपनी आंख से अपना चेहरा देख सकती हूं, चाहे कितना क्लीन किरर हो, मिरर हो, चाहे कितना बड़ा मिरर हो। तो हमारे सामने शास्त्र, पोथी, पुस्तक, ग्रंथ, वेद, बहुत बड़े बड़े मिरर हैं, बहुतों के अनुभव हैं, परंतु आपके अंदर शक्ति तब बढ़ती है जब आपको स्वदर्शन, अपना दर्शन होता है, अपना अनुभव होता है, और अपने में शक्ति बढ़ती है। इसलिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण, बिजनेस में हम शक्तिशाली बन जाते हैं, एजुकेशन में शक्तिशाली बन जाते हैं, खोज में, विज्ञान की खोज, प्रकृति की खोज में शक्तिशाली बन जाते हैं, परंतु अपनी खोज, अपने आप की पहचान, तो हमने दूसरों के द्वारा जो हमको मिला, अगर हमने अपने आप को उसके आत्मिक स्वरूप में अपना अनुभव नहीं किया, आत्मा को शक्ति चाहिए ना, आध्यात्मिक शक्तिकरण, यानी अपने आप के शक्तिकरण का अध्ययन करना, अभ्यास करना। तो अभ्यास तो बाद की बात है, पहली बात है परिचय मिलने की, इन्फॉर्मेशन मिली, सबको पता है हम आत्मा है, कोई बड़ी बात नहीं है। मर जाने के बाद भी कहेंगे हे परमात्मा मुझे आत्मा को शांत, हे परमात्मा इनकी आत्मा को शांति देना, मुझे क्या चाहिए? आत्मा को शांति चाहिए। पर आत्मा है क्या? मैं आत्मा कौन हूं? मुझे आत्मा का इंट्रोडक्शन अथवा आइडेंटिटी है क्या? एनाटॉमी है क्या? तो आत्मिक परिचय के बाद परिचय मिलता है, समझ मिलती है, ज्ञान मिला, उसके बाद है अभ्यास, अभ्यास से अनुभव होता है, आपको ज्ञान मिला, हाँ भाई आप हेल्दी चीज खाएंगे तंदुरुस्त होंगे, समझ मिली कि खाना कैसे है। फल खाना है तो फल अनेक प्रकार का है, अनेक प्रकार का फल, नारियल आप केले की तरह नहीं खा लेंगे, नारियल भी फल है तो केला भी फल है, केले का छिलका उतारा खा लिया, नारियल को ऐसा ऐसे मुख में नहीं डालेंगे। परिचय चाहिए, समझ चाहिए। तो आत्मा शब्द तो मिला, आत्मा आत्मा शब्द बोला, परंतु आत्मा जो चली गई शरीर में से, उसके बाद मैंने उनको याद भी किया, तो मेरा संबंध आत्मा से जिंदा होते दूसरी आत्मा के साथ होगा ना। मैं आत्मा अपने को समझूं तब तो दूसरे को आत्मा समझूंगी, पर वो आत्मा क्या है? क्या था? लाइट है। लाइट इज गॉन, लाइफ इज गॉन। और वो लाइट में जो चली गई शरीर में से, वो शरीर में रहते हुए काम कैसे करती है? मुझे शरीर में रहते शक्ति भरनी है। तो आपने अपने स्वरूप को अभ्यास में लाया, एक्सरसाइज से, एक्सपेरिमेंट से एक्सपीरियंस होता है। तो यहां पर किस लिए बुलाया है कि ज्ञान के साथ साथ, समझ के साथ साथ उसमें आपका अभ्यास बढ़े। तो अब पहले ज्ञान चाहिए, अभी मुझे किसी चीज को भरना है, माने मन में शांति भरनी है, शक्ति भरनी है, तो वो है कहाँ, क्या चीज, तब उसमें भरूंगी ना। मुझे गिलास में पानी डालना है तो मुझे ये तो पता हो गिलास कहाँ है, गिलास कौन सा है, मैं आत्मा शरीर में कहाँ बैठी हूं, मैं हूं तो आत्मा, पहली बात मैं आत्मा हूं कौन, आत्मा तो हूं पर क्या है आत्मा जिसको मुझे शक्तिशाली बनाना है। तो समझने के लिए भाई शरीर को आपने देखा, शरीर आत्मा छोड़ गई, ये कभी नहीं कहा जाता शरीर ने आत्मा छोड़ी, बॉडी लेफ्ट द सोल, ऐसे कभी नहीं कहा जाता, डिपार्चर ऑफ द सोल, डिपार्चर ऑफ द बॉडी नहीं, बॉडी तो हमारे पास रह गई। तो मेरा रिश्ता किससे था, बॉडी से था या आत्मा के साथ था, मकान के साथ था या मकान में रहने वाले के साथ था। तो संबंध मेरा जाने के बाद भी रह सकता है, परंतु संबंध मेरा शरीर में रहते होना है। तो मुझे अपने आप को पहले आत्मा देखना अथवा समझना होगा, तो मैं दूसरी आत्मा के साथ अपना संबंध जोड़ करके व्यवहार ठीक कर सकती हूँ, व्यापार ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि आत्मा आत्मा से बात कर रही है तो राइट बात करेगी, एलिवेटेड डिसीजन होगा, बेनिफिशियल इंटरेक्शन होगा। शरीर शरीर से बात करता है तो शरीर के पास तो फीलिंग ही नहीं है, शरीर के पास तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, प्रकृति का बना शरीर है, शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है, और ये पांच तत्व हैं धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इनमें फीलिंग नहीं है, समझ नहीं है। पानी बहुत अच्छी चीज है, ठंडक है, प्यास बुझाने वाला है, जल ही जीवन है, जीवन देने वाला है, परंतु जल में तूफान, अभी हम देखेंगे सुनामी आई लाखों मर गए, बाढ़ आई कितना नुकसान हो गया, क्या पानी को पता चला कि मैंने कितना नुकसान किया है, क्या फीलिंग आएगी? मेरे घर में आग का साधन है, मैंने ओवन में केक बनाई या कुछ और बनाया, परंतु भूल से कैसे भी करके आग लग गई घर में। आग को पता चला कि मैंने किसी का नुकसान किया है अथवा मैंने किसी को मार दिया है, कोई फीलिंग नहीं है। तूफान आया, सब तोड़ फोड़ कर दिया, कितना नुकसान हुआ। तो अगर मैं सिर्फ अपने आप को शरीर समझ रहा हूं तो हमारे पास एक दो को सुख देने की फीलिंग नहीं होगी। कल्याण करने की भावना नहीं आती है, धोखा ही देते हैं, दुख ही देते हैं। थोड़ा स्मृति रहती है मैं आत्मा हूं, तो थोड़े परसेंटेज सुख है, बाकी परसेंटेज दुख है। कितना भी विश्वास रखो धोखा मिल चलता है। क्या है कि ये बॉडी कॉन्शियस का प्रभाव में आत्मा की जो शक्ति है वो छिप गई, दब गई। इसीलिए वो शक्ति न होने के कारण थकावट, टेंशन, फियर, हर बात में हैवीनेस, इनसिक्योरिटी, उसमें आत्मा हमेशा घबराती रहती है। क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में कोई समझ की शक्ति नहीं है। तो बॉडी कॉन्शियस हम बचपन से बॉडी कॉन्शियस रहे, सोल कॉन्शियस नहीं बने। तो आध्यात्मिक शक्ति सशक्तिकरण माना सोल को जानना और सोल को कॉन्शियस रखना, सोल की कॉन्शियस में रहना। कॉन्शियस का मतलब क्या है? व्यक्ति अनकॉन्शियस होता है तो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, अनकॉन्शियस है, पहचानता नहीं है। रिश्तेदार सामने खड़ा है, हस्बैंड सामने है, मैं पहचानती नहीं हूं। हस्बैंड के सामने बेटा, बाप के सामने बेटा है, आत्मा पहचान नहीं रही, कॉन्शियस नहीं है, कहते अनकॉन्शियस हो गया। तो मैं अगर सोल कॉन्शियस नहीं हूं तो मैं आपकी क्वालिटी नहीं देख सकती। आप सोल कॉन्शियस हैं तो मेरी क्वालिटी अथवा शक्ति को नहीं देख सकते। तो सशक्तिकरण शक्ति से जनरेटर से कनेक्शन होता है ना। तो सोल क्या है फिर से बताते, तो सोल है, एनालाइज करो थोड़ा, शरीर में से आत्मा निकल गई, दिल तो पड़ा है ना शरीर में, फीलिंग नहीं है क्योंकि सिर्फ तत्व रह गया। दिमाग पड़ा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऑर्गन्स है, वो डिविनिटी नहीं है, वो क्लैरिटी नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो विजडम नहीं है, वो कैरेक्टर नहीं है। कहते बड़ा जेनरस था, अरे वो तो सच्ची देवी थी, वो तो बहुत सुंदर स्वभाव वाली बहन थी, फलाना तो दानी था, बड़ा सोशल वर्कर था, बड़ा कुशल बिजनेसमैन था, इंडस्ट्रियस, तो क्या कमाल की कमाल करके दिखाया। पर किसने? आत्मा ने शरीर के द्वारा। अब वो क्या, तो कौन चला गया, क्या निकल गया? दिल पड़ा है, मन नहीं है। दिमाग पड़ा है, बुद्धि निकल गई है। शरीर पड़ा है, कैरेक्टर चला गया। तो वो जो ज्योत जो थी, आत्मा ज्योत निकल गई, तो आप दीवा जगाते हो ना, 13 दिन तक दीवा जगाते हैं। क्या मतलब है? 12 दिन तक तो वो मेरा था, 13वें दिन तेरा हो गया तो दीवा पूरा हो गया, रसम बन गई, रिचुअल रह गया, स्पिरिचुअल खत्म हो गया। तो स्पिरिचुअलिटी इज रियलिटी ऑफ द लाइफ। आध्यात्मिकता ही आत्मिक बल बढ़ती है और उसकी रियलिटी चाहिए। तो रियलिटी में क्या है? आत्मा चेतन ज्योत है, ये दीवा नहीं, लिविंग लाइट है। और लिविंग लाइट में माइंड, 3 चीजें हैं। जैसे दीवा जगता है, मोमबत्ती आप जगाते हो तो तीन चीजें प्रकट हो जाती हैं। वो कौन सी तीन चीज प्रकट होती है? पहली बात लाइट जगी, दूसरी चीज आप उस पर उंगली रखो आग दिखाई, आग का अनुभव होगा। लाइट, आग, तीसरी चीज उसकी लौ, फ्लेम। दीवा जगते तीनों चीजें प्रकट हो गई, दीवा बुझाओ तीनों खत्म हो गए। तो जो आत्मा लाइट है उनमें तीन चीजें शक्ति में, आत्मा की शक्ति स्वरूप बनने की, तीन आध्यात्मिक शक्तियों में मन की शांति चाहिए, भगवान इनको सद्बुद्धि दो, दिव्य बुद्धि चाहिए, चरित्र बहुत अच्छा हो, कैरेक्टर अच्छा हो, गुण अच्छे हो, वैल्यूज अच्छी हो लाइफ में, पर्सनैलिटी अच्छी हो। तो यह आत्मा तीन शक्तियों का कंबाइंड स्वरूप है, इनसेपरेबल एनर्जी है। जैसे दीवे की तीनों चीजें इनसेपरेबल है, सेपरेट नहीं कर सकते, लाइट को, फायर को और फॉर्म को, तीनों इकट्ठी रहती हैं तो कहेंगे दीवा जग रहा है, दीवा बुझा, तीनों चले गए। ऐसे जब आत्मा शरीर से निकल गई तो मन भी चला गया, बुद्धि भी चली गई, संस्कार भी चला गया, अपने संस्कार लेके गया, आत्मा संस्कार लेके गई, पिछले संस्कार लेके आई। तो आप आत्मा हो और वो आत्मा चैतन्य शक्ति, सूक्ष्म शक्ति है। अच्छा, आप शरीर में रहती हो, आपका शरीर है, शरीर में आप कहां बैठी हो? शरीर को चलाने वाली, शरीर की मालिक, उसका स्थान कौन सा है? जब भी आप ध्यान करेंगे, मतलब पहली शक्ति मन है, सोच करेंगे, आपका ध्यान कहां जाएगा? लेट मी थिंक, ओ लेट मी थिंक, ये नहीं कहते लेट मी थिंक, कहते थोड़ा सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो गया। तो सोच यहां, फिर कहते हैं अरे मैंने सोचा बहुत पर मैंने समझा नहीं कि ये राइट है या रॉन्ग है, अभी मुझे समझ में आया, बुद्धि ने समझा, नाउ आई अंडरस्टैंड, बुद्धि यहां गई। आत्मा में ही मन है, आत्मा में ही बुद्धि है, और आत्मा का ही कैरेक्टर, ज्ञान, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ये उसमें चमक है। तभी कहते हैं भाग्य सितारा चमक रहा है। तो आपका भाग्य सितारा चमकता रहे उसके लिए आत्मा की जो लाइट है उसमें ज्ञान, दीपक में ज्ञान घी पड़ता रहे। अपनी समझ से चलें, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में रहने वाली मैं आत्मा हूं, और आत्मा में सोच भी है तो मैं अच्छा सोच सोचू ना। आत्मिक भाव में होंगे तो संकल्प शुद्ध होंगे। तो मन का काम है संकल्प करना अथवा विचार करना, बुद्धि का काम है परखना राइट है या रॉन्ग है और फैसला करना, और संस्कार का काम है व्यवहार में आना, यानी गुण, उसकी जो वैल्यूज है, उसका जो कैरेक्टर है, उसकी जो स्पेशलिटीज है। फिर मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर दो खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, हम सब है तेरी आत्माएं। हम सब परमात्मा नहीं है, जब हम सब आत्माएं हैं तो मैं शरीर समझ के अपने आप को चला रहा हूं तो मेरा एक्सीडेंट होगा ही होगा, अब मोटर में रहने वाला ड्राइवर अपने आप को मोटर समझ करके चले, आप भी अपने आप को मोटर समझ के चलो, मैं भी मोटर समझ के चलूं, कार कंट्रोल में होगी, नेचुरली टक्कर खाएगी। तो आज बचपन से ही हम एक्सीडेंट करते हैं, जबान से एक्सीडेंट, गुस्सा करके आंखों से एक्सीडेंट, मूड खराब करके वातावरण में एक्सीडेंट, घर में एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, बाहर की मोटर और ड्राइवर का नहीं, यही घर में रहने वाली आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ, मोटर का मोटर के साथ एक्सीडेंट होता है। और इतना दुख होता है, जबान से ऐसी बात बोली, ऐसा पत्थर मारा जो 50 साल तक भी वो चोट नहीं मिटती, बाहर से किसी ने पत्थर मारा, टांग टूट गई, डॉक्टर ने मुझे मदद की, मैं ठीक हो गई, पर जबान से जो पत्थर मारा वो मेरे दिल को लगा, मेरे मन को लगा, वो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, वो मुझे अपनी समझ से ठीक करना है, दूसरे के संस्कार को समझ के चलना है। तो अभी जब ये बात समझ में आई कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, और परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहा जाता है, अब सर्वशक्तिवान को मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, तो भगवान कहते हैं भक्त दर्शन करने जा रहा हूं भगवान का। अब मंदिर में जहां मूर्ति है, या आप मन के अंदर जाओ दर्शन करने के लिए, मंदिर मन के अंदर, संकल्प शुद्ध करो। मंदिर में जाते हैं, पहला कौन सा काम करते हैं, बच्चे को भी गोद में लिया हुआ बच्चा है, पहला काम ये है अपने जूते भी बाहर उतार के जाएंगे, बच्चे के भी जूते बाहर उतार के जाएंगे। तो मंदिर में जाना है, चमड़ा बाहर उतार के जाना है, तो मन के अंदर जाना है, तो जो जूती है ना बड़ी बड़ी चप्पल, बड़ी फैशनेबल है, जूती भी बड़ी मजबूत है, बड़ी एक्सपेंसिव है, बड़ी ठाठ बाठ वाली है, इंप्रेसिव है, इस देह भान की जूती को बाहर निकाल के जाना है, मन के अंदर जाना है। तो अंदर अपना दर्शन करना है, तो मन के अंदर जाने के लिए अंतर्मुखी बने, पहला काम क्या करते हैं, जूती उतारी, दूसरा काम क्या किया, मत्था टेका, हमने ये मत्था तो टेक दिया पर माथे में टिके नहीं, समझ आई बात, मैं आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती हूं, कंसंट्रेशन होगी तो यहां होगी ना, सोच होगा तो यहां चलेगा ना, समझ होगी तो यहां होगी ना, संकल्प से दुख से सुख की अनुभूति चेहरे से होगी ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, आईज आर द विंडोज ऑफ द सोल, पर्सनैलिटी इज द विजन ऑफ द पर्सन। तो मुझे अपने आप को अपना दर्शन करना, अपने दिव्य गुणों को बढ़ाना है, तो सोल कॉन्शियस होने के लिए अपने थॉट को यहां कंसंट्रेट करना है, और उसमें थॉट्स में पॉजिटिव एनर्जी भरनी है, मैं शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप हूं। ये ज्ञान समझ में आना है कि मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर का मालिक हूं, कर्म इंद्रियों का राजा हूं, अपनी कर्म इंद्रियों को चलाने वाला, व्यापार या व्यवहार करने वाला कर्म इंद्रिया अपने आप नहीं करती, ये मेरे वर्कर्स हैं। तो सोल कॉन्शियस की एनर्जी में पैसा मन के अंदर गए, माथा टेका, ज्योत को लेके आंखों में लगाते हैं, वो बाहर की ज्योत नहीं है, अपनी दृष्टि में वो दीवा जो जग रहा है वो नहीं, आप जो दीपक हो अपनी आंखों से बुद्धि के नेत्र से अपने आप को ज्योति बिंदु आत्मा देखो। कहीं किस लिए जाता हूँ, बड़ा बड़ा परेशान हूँ, बड़ा अशांत हूँ, मंदिर में जाता हूँ थोड़ी शांति मिलती है। परंतु मन को मंदिर बनाओ शांति मिलेगी, मन को मंदिर बनाया तो विचार अच्छे चलेंगे, आत्मिक स्मृति में टिकेंगे, डिसीजन अच्छा होगा, आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, व्यवहार जो होगा ये भी व्यापार है, लेन और देन है, बाहर का व्यापार कि पहले तो घर का ही व्यापार है, देते क्या है लेते क्या है, क्या रिस्पेक्ट देते हैं जो रिस्पेक्ट चाहिए, क्या प्यार देते हैं सच्चा जो प्यार मिले, क्या सच्चाई है जो सच्चाई मिले। तो आत्मिक संस्कारों में दिव्यता के संस्कार चाहिए, दिव्य गुण चाहिए। तो जब हमारे अंदर आत्मा में ज्ञान की शक्ति, प्रेम की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, सत्यता की शक्ति, शुभ भावना की शक्ति, आनंद की शक्ति, तो सच्चिदानंद, सत्यता और आनंद, आनंद का झूला घर में लग जाएगा, अतीन्द्र सुख का झूला झूलेंगे। अब झूला पे बैठो, ऊपर चढ़ो नीचे, ऊपर नीचे हो, कोई नहीं कहता है अरे डावाडोल हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ऊंची पिंग गई, कमाल का इतना ऊंचा गया फिर नीचे आया फिर ऊंचे गया, कोई नहीं कहता डावाडोल हो रहा है। वो मन स्थिति पावरफुल होगी, परिस्थितियां आएंगी, स्व स्थिति से ऊंचे चले जाएंगे, परिस्थिति नीचे ले आती है, आप फिर ऊपर उठ सकते हो। तो संबंध चाहिए, झूला का कनेक्टेड होना, तो परमात्मा से अगर हमारा कनेक्शन है, सर्वशक्तिवान से हमारा कनेक्शन है, तो हमारा झूला आनंद का झूला है, अतीन्द्रिय सुख का झूला है, उस झूले में झूलते हैं। हमेशा श्री कृष्ण का जन्म होता है तो झूले में झूलाते हैं, अक्षर कृष्ण को हमेशा मोहिनी मूरत कहते हैं, खुशी का झूलक, सुख का आनंद का झूला। तो ऐसी दुनिया में, सुख की दुनिया में चलने के लिए पवित्रता चाहिए, तो ज्ञान शांति प्रेम पवित्रता आनंद शक्ति, ये जब आया तो भाग्य सितारा चमक जाएगा, जीवन में दिव्यता और श्रेष्ठता भर जाएगी। उसके लिए चाहिए मन के ट्रैफिक को कंट्रोल करना। अभी आप देखो, मानो ट्रैफिक होता है, अरे ट्रैफिक है ट्रैफिक है, टेंशन ले लेते हैं। परंतु यहां ट्रैफिक, जब तक ऑफिस पहुंचते हैं या जहां पहुंचना है, डबल ट्रैफिक हो जाता है, यहां भी ट्रैफिक बाहर भी ट्रैफिक, ट्रैफिक का मतलब है बैक टू बैक, हर एक के पीछे दूसरी गाड़ी तक लगी हुई है, एक बात एक चिंता, दूसरी चिंता तीसरी चिंता, एक डर चौथा, एक के पीछे एक। तो यहाँ पर हम अभ्यास करते हैं हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल, बाहर का कंट्रोल नहीं, अंदर का कंट्रोल, व्यवहार में व्यापार में अपने आप से अपना सुधार पर ध्यान देते हैं। तो जब अपनी चेकिंग होती है तो नेचुरली गुण को रख करके, अगर अग्नि जल रही है तो अग्नि नहीं चाहिए बुझाने के लिए, अग्नि को बुझाना है तो पानी चाहिए, गर्मी है तो पंखा चाहिए, सेंट्रल एसी चाहिए, अपोजिट चीज चाहिए। तो समझ मिली तो जैसे के साथ तैसा व्यवहार नहीं, जैसा है तैसा वैसा नहीं, कुछ नवीनता से अपोजिट वाली शक्ति चाहिए, दुख देने वाले से दुख लेने के बदले सुख लेना है और सुख देना है। अब हम दुख देते आते हैं दुख लेते आते हैं, और इतने दुखी हो जाते हैं दुख ले लेके, अंदर वो पचता नहीं है तो क्या करेंगे? उल्टी करेंगे, तेरे को सुनाएंगे, मेरे को सुनाएंगे, भाई को सुनाएंगे, बंधु को सुनाएंगे, फ्रेंड को सुनाएंगे, वातावरण बिगड़ जाएगा, बदबू फैल जाएगी। तो आज सारे समाज में वातावरण, बाहर के वातावरण को ठीक करते हैं, अंदर का वातावरण ठीक नहीं है। क्यों? कि व्यवहार और व्यापार ठीक नहीं है। तो न्यू क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उद्योग अंदर का बढ़ना चाहिए, पुरुषार्थ अंदर का बढ़े तो बाहर का भी बढ़े। तो आप जैसे सोना तप के चमकता है, पहाड़ पर चढ़ने के लिए सीधा नहीं चढ़ जाते, हिम्मत रख के चढ़ते हैं, पहाड़ को देख के अरे इतना ऊंचा है चढ़ भी नहीं सकेंगे, पर कदम एक हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, कदम कदम मदद के मिलेंगे। तो ये शक्तियां मिलती हैं परमात्मा से। आध्यात्मिकता की शक्ति में सबसे पहली शक्ति है जो इच्छाएं पहले बाहर की हैं उसके बदले अंदर की इच्छा को जागृत करो कि मुझे अपनी आत्मिक शक्तियों को इतना बढ़ाव देना है, इतने व्यवहार में लाना है जो बढ़ते बढ़ते संस्कार बन जाए, स्वाभाविक बन जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी चले। व्यापार इसलिए करते हो ना, खाली अपने तक नहीं रखते हो, कहते ऐसा व्यापार करूं मेरे बेटे बेटे भी खाए, पोतरे भी खाए, दोतरे भी खाए। तो अपने लिए व्यापार करो कि जन्म जन्मांतर के लिए आपके पास वो रूहानी शक्ति रहे, 21 कुल आपके तर जाए, 21 पीढ़ी कहते हैं। तो ये आध्यात्मिक शक्ति 21 जन्मों के लिए गारंटी करती है अपने जीवन के सुधार के लिए। तो इसीलिए मन को बनाओ मंदिर, घर को बनाओ आश्रम, सृष्टि को बनाओ स्वर्ग। समझा? मन को मंदिर, घर को आश्रम, व्यवहार में आश्रम में एक दो के साथ व्यवहार ठीक करना सीखे, और तो सृष्टि स्वर्ग बनेगी बनेगी। तो ऐसा उद्योग करे, ऐसा व्यापार करे, ऐसे संस्कार बनाए, उसके लिए आध्यात्मिक शक्ति की बहुत आवश्यकता है। तो आत्मा हूँ, पिता परमात्मा की संतान हूँ, तो अंदर की साइलेंस को बढ़ाए। शांति की शक्ति महान शक्ति है। साइलेंस में बाहर से मुख बंद है, अंदर की शक्ति साइलेंस की क्लैरिटी ले आती है। साइलेंस का आवाज बहुत सत्यता का आवाज होता है। साइलेंस रियलाइजेशन साइलेंस कर देती है, व्यर्थ चिंतन को खत्म कर देती है। तो स्वचिंतन प्रभु चिंतन में मन बिजी होता है तो पर चिंतन खत्म होता है, स्वदर्शन करने का आनंद लेने लगते हैं तो पर दर्शन खत्म हो जाता है, पर चिंतन भी खत्म हो जाता है। और परिस्थितियां क्या करूं, परंतु परंतु चाहता तो हूं परंतु, ये परंतु के पर कट जाते हैं, किंतु और परंतु खत्म हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। और स्वस्थिति और सफलता स्वाभाविक रीति से वरदान बन जाता है। समय कहता है मैं बंद करूं। ओम शांति। थैंक यू। अभी साइलेंस का समय है तो ये समझ करके बैठो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से न्यारी शुद्ध आत्मा हूं और भक्ति के बीच में बैठी हूं। और जो भी यहां बैठे हैं ये आत्माएं भक्ति के बीच में चमकते हुए चेतन सितारे हैं, आप चमकते हीरे हो। समझा? आपके फैसेट्स ज्ञान शांति प्रेम, आप, मैं चैतन्य हीरा हूं, भगवान के गले का हार हूं, ऐसा समझ कर बैठो। ये हीरों का हार सामने बैठा है, तो शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति, शुभ भावना, विश्व कल्याण, अपने आप ही वो वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते जाएंगे। तो जैसा वातावरण होता है, ठंडक को पकड़ के अंदर नहीं लाया जाता, वातावरण से ठंडक आ जाती है। हवा को पकड़ के आप अंदर हवा नहीं देते, हवा अपने आप को टच करती है। धूप को पकड़ के धूप नहीं अंदर आती, सूरज चढ़ता है, गर्मी आपको टच करती है। तो परमात्म शक्ति जब प्रैक्टिकल रूप लेती है तो ऑटोमेटिकली वो अनुभव स्वाभाविक होने लगता है। तो अब यही समझ कर बैठो, मैं शुद्ध आत्मा, हर श्वास में एक ही बात। ओम शांति का मतलब ही है मैं शुद्ध आत्मा, शांत स्वरूप हूं। हर श्वास में श्वास लो संकल्प के साथ, मैं शुद्ध आत्मा, शांति स्वरूप हूं। मेरा स्वरूप ही शांत है। मैं शुद्ध आत्मा, शक्ति स्वरूप हूं। मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूं। मैं कल्याणकारी शिव का बच्चा, स्वकल्याणकारी तो विश्व कल्याणकारी हूं। इन्हीं संकल्पों के साथ अभी सभी शांति में बैठेंगे। ओम शांति।